कल राजा बनने वाले हैं। आज न्यूज मिलती है कि भैया 14 साल के लिए जाना है वनवास में।
केकई जी ने 14 वर्ष मांगे। 14 वर्ष आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार।
कि जब हमने टीवी पे देखा प्राण प्रतिष्ठा से पहले का विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का विग्रह, आंखें बिल्कुल अलग है, ऐसे लग रहा मुस्कुरा रहे हैं श्री राम।
मूर्ति के भीतर प्राणों का संधान हुआ, शिखर बना और शिखर के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का उसके साथ संबंध बना। अब वो मूर्ति राम के साकेत धाम से कनेक्ट।
महाराज ये बताइए कि राम नवमी नवमी में ही क्यों मनाते हैं?
ये चार भाई चार पुरुषार्थों के प्रतीक। श्री राम मोक्ष के, भरत धर्म के, लक्ष्मण काम के, शत्रुघ्न अर्थ के।
महाराज जी अरुण पंडित शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
क्या बात है, बहुत से फिर से आपको राधे राधे।
राधे राधे, लेकिन आज हम करेंगे जय श्री राम की बातें।
जय श्री राम, जय सिया राम,
जय सिया राम। महाराज जी ये बताइए, आप रामनवमी आने वाली है तो हमें अपने घर में राम लला की कैसे पूजा करनी चाहिए?
रामनवमी के दिन सबसे पहले राम जी का जन्म हुआ है तो हम लोग भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। ये सुंदर जो राम जन्म की मानस में चौपाई है, आप इसका कीर्तन कीजिए। सबसे पहले इनकी उपासना कीजिए। वेद शास्त्रों के अनुसार चाहे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, इस प्रकार जब देवता के, प्रभु के जन्म का उत्सव होता है तो वहाँ अभिषेक करने की विधा कही गई है। तो हमारे घर में जो भगवान का स्वरूप है उसको हम पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इनको पंचामृत कहा। ये अमृत हैं, ये 5 जब मिल जाते तो अमृत हो जाते। अमृत कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर में जो हमारी आत्मा है वही तो अमृत है ना। तो 5 चीज़ें हमारी आत्मा को पोषित करती हैं। तो आप प्रभु का सवेरे सवेरे ठीक 12 बजे के आसपास, दिन में 12 बजे राम जी प्रकट हुए तो 12 बजे प्रभु का सुंदर अभिषेक कीजिए। बाई चांस उस दिन अगर आपको ऑफिस जाना है, किसी जॉब में जाना है, काम पर जाना है, वैसे तो छुट्टी है, फिर भी सवेरे के समय पर फिर आप इस कृत्य को कीजिए। भगवान का सुंदर अभिषेक कीजिए, उनको माखन मिश्री पंजीरी का भोग लगाइए, उनको बढ़िया सुंदर भाव से सुंदर श्रृंगार कीजिए, आप बढ़िया सुंदर उनकी आरती कीजिए, बढ़िया उनके प्रिय वस्तुओं को भोग लगाइए। जैसे बर्थडे का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, जो उसको अच्छा लगता है वो सब करते हैं, कई बार अपनी रुचि से ऊपर उठकर करते ऐसे। ये तो रही पूजा। और मैं आपको एक और बात कहूँ भैया, अगर रामनवमी अच्छे से मनाना चाहते हैं तो उस दिन ये सब करने के बाद प्रॉमिस कीजिए कि आज मैं सत्य बोलूँगा तो रामनवमी ज़बरदस्त मनेगी। आज आप प्रॉमिस कीजिए कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाएगी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे से किसी का हृदय नहीं दुखे। आज मैं एक और प्रयास करूँगा किसी से दया की भीख नहीं मांगूँगा। आज मैं स्वबलित रहकर खुद अगर ज़रूरत पड़ेगी वैल्यूज़ के लिए लॉन्ग रूट लेने की भी तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। आज मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेलिब्रेट करूँगा। राम जी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए तो आज तक रामनवमी मनाई जा रही है। तो रामनवमी ऐसी मनाइए कम से कम आपकी लाइफ में तो राम जी का अंश मिले। जरूर अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए, भोग लगाइए, भजन कीर्तन कीजिए, मानस का पाठ कीजिए, उसके साथ साथ ये भी रामचरित्र कैरेक्टर अपनी लाइफ में लाइए। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सत्य बोलूँगा। उसके लिए मुझे कितना बड़ा चैलेंज उठाना पड़े। राम जी सत्यभाषी, और मेरे हिसाब से तो आज आप सेलिब्रेट कीजिए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सेलिब्रेट कीजिए। उन प्रॉब्लम्स की वजह से आज हमारे साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये प्रॉब्लम कई बार सच में जगाने वाली हैं। इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। फूल धोखा है बस सुलाता है, रहमत तो कांटे हैं जो जगाते हैं।
क्या बात।
रामनवमी के दिन सबसे पहले पूजा वूजा के साथ साथ राम जी के कुछ स्वभाव हैं। क्या? सबसे पहले उठ के उस दिन रोज करते हो, वेरी गुड। आज माता पिता को प्रणाम कीजिए और गुरु जी को प्रणाम कीजिए, आपके टीचर, आपके मेंटर, उन्हें आप, अच्छा कोई कहते हम तो रोज ही प्रणाम करते हैं, तो अगर आप रोज राम राम जी करते तो उस दिन पैर छूजिए, अगर आप पैर छूते हैं तो जमीन पर माथा रखकर प्रणाम कीजिए, अगर आप पंचांग प्रणाम करते तो उस दिन साष्टांग प्रणाम करिए, माता को कीजिए, पिताजी को कीजिए, गुरु को कीजिए, मात पिता गुरु नाभि माथा, राम जी सबसे पहला काम यही करते हैं। तो रामनवमी मनानी है गजब, तो सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस दिन बढ़िया सुंदर एक पेड़ लगाइए, अच्छा वृक्ष लगाइए, प्रकृति का पोषण कीजिए। राम जी वनवासी हैं तो राम जी को पसंद करना है, वो वन में रहना पसंद करते हैं, तो आपके घर के आंगन में कोई सुंदर आप पेड़ को लगाइए, घास को लगाइए। आप उस दिन राम जी पशु पक्षी इन सब के बीच में रहें तो मुझे लगता है उस दिन गौशाला में किसी गैया को खिलाइए। आप उस दिन जाके किसी पक्षी को सुंदर जल दीजिए, तब आप गरुण का स्मरण करें, संपाति का स्मरण करें। आप ये सब कार्य रामनवमी पे करने योग्य हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरे को एक बहुत आपको गजब की चीज कहनी है कि रामनवमी के दिन जरूर जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, जिसने कभी जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा किया हो हार्ड टाइम में, उसको थैंक यू जरूर कीजिएगा उस दिन विशेष, नॉट जस्ट मैसेज, फ़ोन करके, वो बिजी हो तो टाइम लेके कि आज मुझे रात तक भी एक मिनट टाइम दे दीजिए, आज रामनवमी का दिन है, राम जी कृतज्ञता ज्ञापन करना जानते हैं, इसलिए मैं आज उस उनके दिन आपको थैंक यू बोलता हूँ, आप राम जैसे मेरे जीवन में आए, आपके ऊपर राम जी की कृपा बरसती रहे। ये सब राम को नचा देता है, मजा दे देता है, ये सब चीज़ें राम जी को निहाल कर देती है, वाह मैंने जो किया उससे जनता ने कुछ सीखा, उससे भक्तों ने कुछ सीखा, उससे भारत ने कुछ सीखा, उससे भारत इस आदर्श को स्थापित कर सका।
महाराज जी ये बताइए कि राम नवमी नवमी में ही क्यों मनाते हैं और कृष्ण अष्टमी अष्टमी में क्यों मनाते हैं?
ये अंक विज्ञान भी है इसके पीछे, अंक में नौमा अंक पूर्णांक होता है, हम जानते प्रसिद्ध बात है, नौ के पहाड़े में नौ दुनी 18, 8 और 1 9 होता है, तो ऐसे प्रकार की हजारों व्याख्याएं की गई हैं। नौमा अंक पूर्ण अंक है, नौ देवी हैं, नौ शक्ति हैं, नवद्वार हैं, नवग्रह हैं, बहुत कुछ नौ है। बल्कि अभी हम लोग जो संवाद कर रहे थे तो ये चीज़ अच्छी आ गई, 432,000 वर्ष का कलयुग है तो 4, 3 और 2 मिलाओ तो 9 हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नौ के साथ खड़ी हैं। मैं और दृष्टि से देखूं तो 9 एक जैसा होता है, एक सीधा रहता है, 9 के सीधे में ऊपर कुछ घुमाव रहता है, तो एक को और विस्तृत कर लो तो 9 होता है, संख्या 1 से 9 तक ही होती है, तो ब्रह्म एक है और ब्रह्म का पूर्ण विस्तार 9 है राम। अब तो इसके बाद रिपीटेशन है ना, सब खर्ब तक ले जाओ सब रिपीटेशन है, संख्या केवल 9 तक ही है। इस दृष्टि से ब्रह्म का पूर्ण विस्तार 9 है, इसके बाद सब रिपीट है, सब जगत है, सब माया है, इसके बाद तो सब दोहर रहा है। और ऐसी बहुत सारी व्याख्या की गई है, कहने का अर्थ यही है कि राम जी ने इस पूरी अस्तित्व को पूर्णता प्रदान की है, इसलिए उन्होंने नौमी तिथि का चुनाव किया कि मैं इस दिन प्रकट हो सकूं। एक और बात है कि उससे पहले सारी तिथियां सब देवताओं ने घेर रखी थी,
नौमी काल
गणेश जी ने चतुर्थी घेर ली थी, सब ने सब घेर लिया था, इसीलिए बुद्ध ने पूर्णिमा घेर ली थी, सब ने सब घेर ली थी, नौमी खाली थी, तो प्रभु बोले नौमी को ही प्रकट हो जाओ। उस दिन प्रकृति ने द्वार खोला था परमात्मा के आने का, पूर्ण हो गई थी, तो भगवान ने रामनवमी की तिथि का चुनाव कर लिया।
महाराज जी ये बताइए, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, तो राम जी को आप कैसे देखते हैं?
देखिए एक चीज समझिए, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, दो मानने में ही झंझट। इस बात की व्यवस्था को अच्छे से समझना होगा। आप यूं समझिए कि आप समय को मानते, ठीक है,
ठीक है।
समय को देखने के जरिए बहुत सारे हैं। एक घड़ी आपके हाथ में, एक घड़ी मेरे हाथ में, एक घड़ी दीवार पर लग रही है। उसी प्रकार से हम भगवान को मानते, भगवान को मानने के जरिए बहुत सारे हैं। एक कृष्ण है, वो भी उस घड़ी का ही तो, जैसे घड़ी है, घड़ी तो अपनी तर्ज पर घूम रही है ना, देखने की व्यवस्था अलग अलग है। तो इसी प्रकार भगवान ने अलग अलग रूपों में अलग अलग संदर्भ को बड़ा किया है। हम जब कृष्ण को मान रहे हैं तो राम को नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। कृष्ण को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण में प्रेम बहुत ऊंचा गुण है और हम लोग प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए मैं श्री कृष्ण के प्रति झुक जाता हूं। पर प्रेम आपके जीवन में है, पर उसके साथ साथ अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, वैल्यूज नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, तो वो प्रेम किस काम का रहा? तो जब हमको मर्यादाओं की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, तो राम को भी अच्छी तरह से ही मानना है। और मैं तो दूसरी बात कहूँ, जब मैं राम बोलता हूँ तो मुझे कृष्ण ही दिखते हैं, क्योंकि राधिका का र लिख लो और माधव का म लिख लो, राम बन जाता है। कृष्ण बोलता हूँ तो अकेले खड़े रहते हैं, राम बोलता हूँ तो दोनों खड़े रहते हैं। सो मर्यादाओं के शिखर हैं, बल्कि राम ही कृष्ण हैं। सच बात तो ये है कि राम जी की लीला में जो जो होता जा रहा है, श्री कृष्ण उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं। जैसे बाली के प्रसंग में छुप करके राम जी ने तीर मारा।
क्या प्रसंग था है?
कि बाली का युद्ध छिड़ा सुग्रीव के साथ और बड़ा भारी गंभीर युद्ध शुरू हुआ। जाके सुग्रीव, और पहले तो सुग्रीव हावी, बाली हावी होता जाता था, फिर सुग्रीव ने उठा करके उसको पटका। और जब ये व्यवस्था शुरू हुई तब क्या किया जाए, बार बार सुग्रीव आता, राम जी बोले आपके रहने, सुग्रीव बोला राम जी आपके रहने से फर्क क्या पड़ा, मैं तो अभी भी पिटे जा रहा हूँ। भगवान ने कृपा करी, प्रसंग तो बहुत लंबा है। राम जी बोले मैं कृपा भी तेरे पे करने को तैयार हूँ, पर मेरी कृपा तुझ तक पहुँच नहीं रही है क्योंकि तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। एक काम कर, तू लक्ष्मण जी के आश्रय में बैठ। उसने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने उसके कान में राम जी का मंत्र फूका और टूट पड़ा सुग्रीव। अब तो बाली को उठा उठा के फेंकता था। बाली ने एक देवता सिद्ध कर रखा था और जब उसने देवता का आवाहन किया जो सुग्रीव के बल को खींचने लगा, तो राम जी बोले भाई भाई तक युद्ध चल रहा था, जब तक तो सीमित है, अगर बाली का देवता बोलेगा तो फिर सुग्रीव का देवता भी बोलेगा। तो राम जी ने तीर मारा। खैर किसी के मन में, और अगर उसके मन में ये बात आ गई हो कि राम जी ने छुप के तीर मारा, तो राम जी बोले ठीक है, एक्शन का रिएक्शन मैं कर देता हूँ, कृष्ण लीला में पूरा कर देता हूँ। तो एक काम ऐसा करते हैं कि अब तू मुझे छुप करके मेरे पैर में तीर मार लियो। वहां इस तरीके की भावना बनी। यहीं आप देखिए रावण ने सीता जी का हरण किया, पर बिना मन से किया, सीता जी जाना भी नहीं चाहती थी, विवाहिता थी। तो श्री कृष्ण बोले हम रुक्मणी जी का हरण कर लेते हैं, पर वहां रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, वो उनसे विवाह करना चाहती थी। ये दोनों चीजें कैसी विरोधाभासी क्रिया चल रही है। हमने ऐसा देखा कि राम जी ऊपर बैठते हैं तो हनुमान जी चरणों में बैठते हैं। तो कृष्ण बोले इस चीज को भी मैं फिर से दोहरा लेता हूं, अब की बार मैं नीचे बैठूंगा और झंडे में हनुमान जी आप ऊपर बैठ जाना। तो राम की कृतज्ञता ज्ञापन कृष्ण ने की है, रामलीला की पूर्ति कृष्ण लीला ने की है, कृष्ण लीला की भूमिका रामलीला में बनी है। कैसे दो को अलग किया जा सकता है?
राम जी की बात चल रही है तो अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना, उसमें ऐसा हमने नहीं देखा कि राम दरबार की फोटो लगाई हो या मूर्ति बनाई हो। इस बार एक 5 साल के राम की वहाँ पे मूर्ति हुई, उनकी छवि वहाँ पे रखी गई, ऐसा क्यों किया गया?
मैंने भी वहाँ ये जिज्ञासा रखी थी क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित था। तो ये विलक्षण है, राम दरबार तो सब जगह है क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। तो बालक राम का विग्रह है, ये बालक राम है मेरी जानकारी के हिसाब से। आगे तो पता चलेगा कि जब मंदिर अपने सेकंड फेस में जा रहा है तब बाकायदा राम दरबार का भी प्रमाण बन रहा है, पर ये स्वतंत्र श्री बालक राम का स्वरूप है। एक प्रकार से जैसे हम
विराट कृष्ण का दर्शन करते हैं तब उसमें आसपास कोई भी नहीं होता है, कई बार राधा रानी भी नहीं होती है। आप द्वारिकाधीश मंदिर में जाइए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान है, कोई भी पास में नहीं है। उसी प्रकार से ये भगवान श्री राम की 5-7 वर्ष की जो उम्र है, जब उनका विवाह भी नहीं हुआ है, अभी तक वो विश्वामित्र जी के साथ भी नहीं गए, वो विग्रह की वहाँ स्थापना की है, क्योंकि जन्मभूमि है, उनका महल है, पहले बच्चे हैं फिर बड़े हुए हैं, तो सामने आप देखिएगा छोटे राम जी हैं जो पुराने टेंट में रहे थे। ये तो ठाटवाट वाले राम है, ये तो सीधे ही महल में विराजे हैं, पर जो असली जो इतनी स्ट्रगल में रहे वो तो आगे छोटा विग्रह। तो पहले 6 जैसे हम कहते लड्डू गोपाल, ऐसे छोटे वाले राम जी, पीछे बालक राम, अब ऊपर राम दरबार विराजेगा। तो राम जी के जीवन के जितने फेज हैं वो वहाँ पर डेवलपिंग फॉर्मेट में है, फर्स्ट फेज में बालक राम विराजमान हुए।
राम जी की कोई और जैसे
रामायण, एक चीज मुझे और लगी, सॉरी अरुण भाई,
जी बिल्कुल,
मैंने रोक दिया आपको। मुझे ऐसा लगा कि ये देश युवा है और यहाँ बालकों को समृद्ध करने की जरूरत है, यंग को, यंग खास अभी फैमिली बनने से भी पहले वाली जो स्टेज है ना, सेंसिटिव स्टेज, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, प्री टीनेज बोलते हैं, 6-7 साल 8 साल के बच्चे से लेकर जो ये 17-18 साल की एज है, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, वो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिलने वाली एज है। बनता भी आदमी, बिगड़ता भी है, सीखता भी है, समझता भी है, टेंडर, अंग्रेजी में बोलते, बड़ी टेंडर एज है, बड़ी जैसे कोमल सी आयु है। और भगवान श्री राम उस आयु में विराजमान है। मेरे मन में यह अनुभूति आई, किसी ने मुझसे कही नहीं, कि अगर भारत के उस युवा वर्ग का व्यक्ति राम जी के इस विग्रह से जुड़ जाएगा कि तो मेरे जैसे हैं, और उनके कैरेक्टर को अपनी लाइफ में लेकर के आएगा, तो मुझे लगता है कि भारत स्वर्ण की चिड़िया बड़ी आसानी से बन सकता है। हम जब फैमिली वाले राम देखते हैं तो केवल उनसे फैमिली एथिक्स सीखते हैं, जब हम राजा वाले राम देखते हैं तो हम केवल किंगशिप हम उनसे सीखते हैं, किंगडम हम सीखते हैं, जब बिल्कुल ही लड्डू गोपाल वाले राम हम देखते हैं तब एक छोटे बचपन के उद्दंडता में भगवान का दर्शन होता है। तो कहीं पर भी वो जो स्वतंत्र टीन एज जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखने में आती, जो सबसे टेंडर, मेरी, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे किसी ने कहा नहीं तो मैं बड़ा खुश हुआ मन ही मन कि उस एज वाले को अपने जैसा भगवान मिल गया। भगवान भी उस एज में, और उस एज में उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यूज एथिक्स को आगे रखा है। तो अगर वो बात आज के ज़माने में कोई अपना ले, 8 साल से 18 साल का बच्चा राम के चरित्र को जोड़ ले, तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता, ऐसा मेरा अनुभव रहा।
हाँ सही बात है। मेरा यहाँ पे एक और सवाल आता है महाराज जी आपसे, कि जब हमने टीवी पे देखा सो प्राण प्रतिष्ठा से पहले का विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का विग्रह, आँखें बिल्कुल अलग हैं, ऐसे लग रहा मुस्कुरा रहे हैं श्री राम, ऐसा क्यों हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है?
पहली बात मैं आपसे बताऊं, एक चीज़ हमें समझनी है जो कि विधर्मियों ने भी हमारे यहाँ गलत फहमी फैला रखी है, हम लोग ना मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग देव पूजक हैं। वो जो मूर्ति बनाने वाला वही कह रहा मैं नहीं पहचान रहा, इसका मतलब ये समझिए कि इतने दिन का यज्ञ, आप अयोध्या में देखिएगा पूजा विधान, इस सब के द्वारा उस देवता का आवाहन उस मूर्ति में होता है। आप तो एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, हम लोग पूजा कर्मकांड में देखते हैं कि सुपारी में गणेश जी को बुलाते हैं, कलश में वरुण को बुलाते हैं, पूजा के बाद में गच्छ गच्छ सुरस श्रेष्ठ कि प्रभु अब आप वापस जाइए वापस जाइए। तो हमारे यहाँ देव पूजन में देव का कहीं आवाहन होता है और फिर उसका विसर्जन होता है। तो इसी प्रकार से एक मूर्ति के भीतर मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, विधानों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा बहुत लंबी, लगभग 40 दिन की प्रक्रिया है, 40 दिन की प्रक्रिया के द्वारा उस मूर्ति को जीवित किया जाता है, उसमें प्राण का संधान किया जाता है। आप तिरुपति में जाकर देखिए भगवान की नसें दिखती हैं, मैं तो पास में से दर्शन किए हैं किसी समय, हमारे राधारमण लाल मुस्कुराते, ये सब जीवंत स्वरूप है, उनके भीतर प्राण, पूरे यूनिवर्स की एक, अगर आज की भाषा में मैं बोलूं तो पूरी यूनिवर्स की जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है उसको सेंट्रिक करके कंसंट्रेट करके एक तरफ स्टैब्लिश किया जाता है, फिर उस मंदिर के ऊपर शिखर बनता है, शिखर के ऊपर कलश बनता है। ये प्रोसेस ऑफ एंटीना है। ऐसे समझिए, फोन में सिम कार्ड, सिम कार्ड के ऊपर पहले जमाने में आता था एंटीना जो कि फर्दर सैटेलाइट से कनेक्ट करता था। तो एक मूर्ति के भीतर प्राणों का संधान हुआ, शिखर बना, और शिखर के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का उसके साथ संबंध बना, जिससे वो दिव्य ऊर्जा, मतलब अब वो मूर्ति राम के साकेत धाम से कनेक्ट हो गई, और राम जी जो साकेत धाम में बैठे हैं उन्होंने अपनी ऊर्जा को, जैसे सूरज की किरण से कमल खिल जाता है, ऐसी इस मूर्ति को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया। मतलब इस माध्यम से अब श्री राम तक सीधा संबंध हो रहा है, संपर्क हो रहा है। जैसे पोस्ट बॉक्स में लेटर डालो, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है तो आपका लेटर चला जाएगा, एक मूर्ति अब सीधी राम से जुड़ गई है। ये राम की प्रतिष्ठा हुई है, उसकी प्रतिष्ठा हो गई, आपकी भावना राम तक पहुंचेगी और उस माध्यम से राम की कृपा हमारे जीवन में आएगी। ये विधान है। पहले समय में तो हमने यहां तक सुना है, नाक के पास रखा हुआ धान उड़ जाता था जब प्राणों का संचार होता था,
सांस आती थी, सीसा टूट जाता था, ऐसा भी।
हाँ, वो भी कई बार सुनने, फिर तो कई लोगों ने उसको खेल सही बना लिया, इतना आसान भी नहीं है। और शीशा टूट जाता था क्योंकि प्रतिबिंब होता था उसमें, नाक से पास में रखा धान उड़ जाता था, मूर्ति सजीवित हो जाती थी, और फिर उसका ध्यान नहीं रखा जाए तो फिर उसमें से देवता चला भी जाता था, ये तक भी व्यवस्थाएं। और उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए तो धीरे धीरे तो यहाँ तक बात बढ़ती है ना कि मूर्तियाँ बोलने लग जाती हैं, इतनी ऊर्जा का उसमें संविधान हो जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि अब मुझे ले चलो, अब उदयपुर की तरफ ले चलो। हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि नामदेव जी के साथ विट्ठलनाथ जी बातचीत कर रहे हैं, श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है। यहाँ तक जैसे एक जानवर है, मैं तो ये बात एग्जांपल दूँ, हम आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर जो रोज ध्यान रख रहा है, 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 वो तो एक पशु तक से कनेक्ट हो जाता है कि ये मांग रहा है इस समय, ये खाने को मांग रहा है, ये समय इरिटेट हो रहा है। जैसे एक माँ बच्चे से कनेक्ट हो जाए, बच्चा रोए हम माता मारते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, और माँ को पकड़ लेगी कि इस समय इसके सिर में खाज हो रही है बार बार, या ये भूखा है, या ये सोना मांग रहा है। तो ये इमोशनल कनेक्ट है ना, तो जब एक मूर्ति के साथ भी ईश्वर का इतना संबंध हो जाता है तो मूर्ति तो निर्देशित करने लगती है। राधा रमण जी गोपाल भट्टी जी से बोलते हैं, आज मुझे खाने के लिए ये दीजिए, आज मैं ये खाना चाहता हूँ। ऐसे सूरदास जी चलते, भगवान संग घूमते, सूरदास जी जब चलते तो डंडा टेक के नहीं, सीधा करके चलते हैं। लोगों ने पूछा, अंधे आदमी को तो डंडा टेकना चाहिए, बोले जब मैं चलने का सोचता हूँ ठाकुर जी आके मेरा डंडा पकड़ लेते हैं, कहाँ चलना है बता। यहाँ तक स्थिति आगे पहुँच जाती है, अगर हम अपनी पवित्रता रखें तो यहाँ तक बात ले जा सकते हैं।
हम अपने घर में अपने जो विग्रह हैं, पूजा घर बनाते हैं, उसमें ये पवित्रता ला सकते हैं?
क्यों नहीं ला सकते,
क्या प्रोसेस होगा फिर?
घर में भी भगवान जीवित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सीधी बात ऐसी है कि सबसे पहला सिंपल आपको बात कहूँ, मंदिर में भगवान की जो मूर्ति आप रखें उसको परिवार का सदस्य मान के चलें, सबसे सिंपल एंड ईजी। जैसे घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हम कदर करते हैं, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, उसके लिए समय देते हैं, ऐसे ही आप घर में विराजमान ठाकुर जी का भी सेवा करिए, उनका भोग करिए, ध्यान करिए, आरती कीजिए, सेवा कीजिए, जब बच्चे का जन्मदिन होता है उनका भी जन्मदिन कीजिए, मनाइए, भाव करिए, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तुलसीदास जी ने उपाय बताया है, मंदिर में भी नहीं मिलेगा कई बार भगवान, तो मंदिर में घूम के आओ, पूछो मंदिर में कौन था, बोले मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस पंडित थी, मिसेस गोस्वामी थी, मिसेस राम, मिसेस कृष्ण से तो कोई मिल ही नहीं पाया। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरी सर्वत्र समान व्याप्त, इससे रेवोल्यूशनरी चौपाई मैंने कहीं नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा समाना, बात ही खत्म हो गई, बाजार में जितना मंदिर में उतना बराबर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम होते ही प्रभु प्रगट हो जाता है। तो ये तो इमोशनल बात हुई, पर आपको बिल्कुल पर्टिकुलर बात कहूँ, घर में जो आपके अगर आप भगवान कृष्ण की, भगवान राम की सेवा करते हैं, तो कम से कम हमें उन्हें 3 समय भोग धरना चाहिए, कम से कम हम की हमें उन्हें सुबह और संध्या के समय उनकी आरती करनी चाहिए, रात्रि के समय मंदिर को शयन कराना चाहिए, सुबह उठाना चाहिए। और एक छोटा उपाय और कि जब घर से जाएं भगवान को कहकर जाएं, जब घर में वापस आएं बता दें कि मैं वापस आ गया हूँ। ये 5-7 क्रिया प्रक्रिया भी शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े हिमालयों के ऊपर यात्रा करके मंदिरों में जो शांति का अनुभव होता है उन्हें वो शांति अपने घरों में भी अनुभव में आ सकती है।
जैसे कुछ लोग अपना घर बदलते हैं, फ्लैट में रहते हैं, आज यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, कल कहीं और रह रहे हैं, या नौकरी बदल गई तो इधर उधर बदल गए, तो अपने घर के मंदिर को साथ में लेकर जाना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या प्रोसेस होना चाहिए?
देखिए दो प्रकार की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जो टेम्प्रेरी लोग रहते हैं वो एक होती है मूर्ति स्थापना, एक होती है प्रतिष्ठा। जब कोई प्रतिष्ठा मूर्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा तो अचल हो जाती है, जो हिले भी नहीं, उन लोगों को उससे बचना चाहिए। और निश्चित रूप से आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो आप भगवान को सबसे पहले निवेदन कीजिए, अब आप मेरी तरफ चल रहे हैं तो दूसरी जगह चलिए। एक ऐसा साधन बनाइए जिसमें भगवान को शयन कराइए, मतलब लिटाइए, ढक दीजिए, उतनी देर के लिए भगवान शयन हो गए, और शयन होने के बाद में हम दूसरे स्थान पर ले जाएं। मानिए उस दूसरे स्थान के क्रम में एक दो दिन के सफ़र आ रहे हैं, तो उस बीच में हम उन शयनस्थ भगवान की ही सेवा कर लें, वहीं उसकी अंदर में बाहर में भोग धर लें, उसी की आरती कर लें। मानिए हम ट्रेन आदि की यात्राओं में ये भी नहीं कर सकते तो मन से एक क्षण के लिए उस सेवा को कर लें, और करने के बाद में दूसरी जगह जाके पवित्रता से हम भगवान के मंदिर को फिर से विराजमान कर लें। और स्टूडेंट लाइफ वाले लोग, बहुत ज़्यादा समय समय पर बदलने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान के चित्रपट की सेवा करें,
फोटो फ्रेम
की। वो भी एक ही बात है, मेरी बड़ी बात मन की है। मेरे मूल भगवान तो राधारमण लाल हैं, तो मेरे सब श्रोता ये बात जानते हैं। मेरी भी व्यासपीठ पे कभी आप अरुण भैया देखेंगे तो सामने एक चांदी के फ्रेम में ठाकुर जी रहते हैं, तो मैं भी खुद ही चित्रपट की, मैं बंजारा आदमी, आज सुबह यहाँ, शाम को यहाँ, कल यहाँ, तो मैं खुद उस चित्रपट की भावना से सेवा करता हूँ। भगवान की एक मूर्ति होती है जिसको हम बोलते हैं धातु की मूर्ति, जिसमें सोना, चांदी, अष्ट धातु, ये सब चीज़ें। दूसरे प्रकार की मूर्ति होती है भगवान की जिसको बोलते हैं हम लकड़ी की, जैसे जगन्नाथ भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही है। तीसरी मूर्ति होती है भगवान की पाषाण की, पत्थर की बनती है। चौथी प्रकार की मूर्ति होती है मिट्टी की, जैसे कई बार रुद्राभिषेक में जब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक लोग करते हैं तो मिट्टी के ही भोलेनाथ बना लेते हैं, बाद में विसर्जित कर देते हैं, तो मिट्टी से निर्मित। और पांचवें प्रकार की मूर्ति होती है चित्र विग्रह, बढ़िया सुंदर चित्र बना के उसी प्रकार की भावना करके हमें। कई बार एक और चीज़ हो जाती है ना कि घर में भगवान है और आप 2 ही दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, क्या करें उनका, क्या संग लेकर जाएं? अब भगवान ऐसे हैं कि अब कई मुझे अच्छा नहीं लगता कि डलिया में ले लेके घूम रहे हैं, वृंदावन भी ले आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मंदिरों में ले जाते हैं, ये लीजिए ठाकुर जी को, बिहारी जी का दर्शन कराइए, ना ये खुद बिहारी को, इनको तुमने बिहारी अगर नहीं माना है तो क्या कर रहे हो घर में? तो उसके लिए भी क्या विधान है शास्त्र का कि उन भगवान को घर में विराजमान कीजिए, उनका एक चित्रपट अपने संग लीजिए और सफ़र में ले जाइए, उस चित्र की भावना से आप भगवान को भोग धराइए। सब कर हम असमर्थ हैं, वो तो समर्थ है ना, वो इस भावना से ग्रहण करें। इस प्रकार की शास्त्रों ने सेवा की व्यवस्थाओं को रखा है।
महाराज जी, जैसे आपने चित्रपट बोला, कुछ घरों के मंदिरों में देखा जाता है कि जितने भगवान आप सोच सकते हो, जितनी देवियां आप सोच सकते हो, सारी फोटो लगा रखी है। उसमें मेटल वाले भी हैं, मिट्टी वाले भी हैं, हर तरह के, शालिग्राम भी, सब कुछ है। क्या इतने सारे देवी देवताओं भी विभिन्न विभिन्न घर में लगाना चाहिए, अपने पूजा घर में बनाना चाहिए?
मेरा मानना है एक ही होनी चाहिए। पुरानी किसी भी मंदिर में जाएं, एक विग्रह के अलावा कभी आपने दूसरा नहीं देखा होगा। सिद्धिविनायक में जाइए तो भोलेनाथ भी बाहर बैठे हैं, केवल गणेश का पूजन हो रहा है। तो व्यवस्था तो यही है कि केवल एक ही दे, एकौ साध है सब सधे और सब साध है सब जाए, ये हमें मालूम है। फिर भी आज के समय में स्वाभाविक रूप से ऐसा हो ही जाता है, इतनी चीज़ें आई जाती हैं, तो बहुत से लोगों का ये भाव होता है कि अब भगवान के चित्र आ रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ रखें? तो वो एक कक्ष को मंदिर की तरह ऐसा बना देते हैं कि सभी को वहाँ पर विराजमान कर देते हैं। अगर हमारा अनुभव इतना बड़ा हो गया है कि सबके होते हुए भी हम अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण रूप से सेवा कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। भगवान ही है, हमारे यहाँ बहु देवताओं की पूजाओं होने का विधान है, सभी लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग दिनों में करते हैं, तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। पर उसमें भी शास्त्रीय विधान, भगवान शंकराचार्य ने 5 देवताओं की आज्ञा की है, चाहे घर हो और चाहे विधिवत मंदिर हो, मंदिर 5 ही का बन सकता है। एक गणेश का और गणेश जी के जितने स्वरूप हैं उनका, दूसरा देवी का, उनके जितने स्वरूप हैं 9 देवियों के उनका, तीसरा शिव का जितने रुद्र हैं वो, चौथा विष्णु का उनके जितने 2400 अवतार हैं वो, और 5वां सूर्य का। सूर्य क्योंकि प्रत्यक्ष हैं तो आप सामने उनका रोज दर्शन कर सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से उनके मंदिरों का विधान नहीं होता। मंदिर 5 ही के बनते, पूजा हम सभी की करते हैं। जब आपके घर में दिवाली पूजन, नॉर्मल डेज के पूजन होते हैं, तो चौकी के ऊपर आप देखिए वो पंडित जी चावल से अलग 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 चीज़ें बनाते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं, षोडश मातृकाओं को बुलाते हैं, चिरंजीवों को बुलाते हैं, वरुण कलश बुलाते हैं, इंद्रादि देवताओं को बुलाते हैं, सबसे आपसे फूल पूजा सब कराते हैं। पूरा उस चौकी के ऊपर ना पूरा सोलर सिस्टम बनता है, टेक्निकल बात में कहूँ, पूरा एक एक आकार, इस दिशा में ये देवता, इस दिशा में ये देवता, नवग्रहों को विराजमान करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। पर मंदिर जिस चीज़ को कहा जाता है वो केवल 5 ही देवताओं का, 5 ही, क्योंकि ये 5ों जीवन में आवश्यक जितनी चीज़ें हैं वो सब दे सकते हैं, और उसमें भी ये 5ों मूलतः अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, 5ों एक हो सकते हैं। अब कई जगह एक और समस्या आती है अरुण भैया कि 5ों को विराजमान करो, इससे भी और ऊंची बात है कि एक को ही 5ों का दर्शन करो। एक 5ों भी हुए हैं, एक ही 5ों भी, आप हनुमान जी को मानते तो हनुमान जी भी 5ों हुए हैं। हनुमान जी शिव के स्वरूप है, शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर आप हनुमान जी जब अहिरावण के उद्धार के लिए देवी के रूप में प्रकट हो गए थे, अहिरावण ने पूजा की थी, तो अब हनुमान जी में भी देवी का दर्शन कर सकते हैं। हरि वानर को भी कहते हैं तो वो स्वयं वानर के स्वरूप है ही हैं। सूर्य को उन्होंने मुख में रख लिया, उस समय सूर्य उनके मुख में विराजमान है तो वो सूर्य रूप से भी प्रकट हो गए। और मंगल भवन अमंगल हारी, जो स्वयं मंगल मूर्ति रूप ऐसा कहा है, तो गणेश जी मंगल के स्वरूप हैं, एक ही देवता में 5ों प्रकट हो गए। हम अगर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण भी 5ों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, श्री कृष्ण मंगल के स्वरूप बन गए। श्री कृष्ण मोहिनी का अवतार धारण करते हैं तब देवी के रूप में, मोहिनी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भी मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं तब उनका देवी स्वरूप विचार हो जाता है। गोवा के पास में बहुत ज़बरदस्त कांड कोण दक्षिण गोवा में मंदिर है, लोग गोवा बहुत सारे रीजंस के लिए जाते हैं, वहाँ जाके दर्शन करें। भागवत में मोहिनी की स्तुति आती है कि काम पूरम नतोस्मी, सारी कामनाओं को पूरा करने वाली, जो अमृत का वितरण करने वाली, जीवन में कॉन्शियसनेस अमृतत्व देने वाली, तो वो मोहिनी है। कृष्ण भी मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं। तो हर एक स्वरूप हर रूपों में प्रकट, ये 5ों इंटरचेंज हो जाते हैं अपनी अपनी शक्ति से। तो इन 5 देवताओं की आप घर में भी बनाइए, एक इष्ट को विराजमान करके उसके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। यही हमारी, बस एक ध्यान रखिएगा, जिसको विराजमान करें उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। आजकल क्योंकि बहुत सारे नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारे देवता या सिद्ध लोग या नई नई चीज़ें आपको दुनिया की सारी चीज़ें दे सकते होंगे, पर मोक्ष दे सकते हैं कि नहीं? आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो ये दोनों चीज़ों में, इहलोक और परलोक, ये 2 चीज़ दे सकता हो तभी वो वेद उसको पूज्य कहता है। ये 5ों सब दे सकते हैं, इसीलिए इनके मंदिर बनाने का विधान होता है। जैसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, इंद्र मोक्ष नहीं दे सकते, इंद्र आपको स्वर्ग दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं। और मानवीय जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य बहुत सारे उद्देश्यों के साथ, धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष भी है।
क्या है मोक्ष?
सात प्रकार की व्याख्या की है। सिंपल भाषा में तो जीवन और मृत्यु के चक्र से निवृत्त हो जाना ही मुक्ति है। ये सबसे ऑथेंटिक, प्राचीन और सर्वशास्त्र सम्मत बात है कि हमने जो बार बार जन्म और मृत्यु की है, बहुत सारे हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी बहुत सारे होंगे, जिस क्षण हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निवृत्त हो जाए, वही मुक्ति का साधन है। बार बार ये जो यात्रा चलती जा रही है हमारे जीवन में, किसी समय कोई योनि है मनुष्य जीवन के प्रारब्ध को भोगने के लिए हम लेते हैं, और फिर कई योनि है मनुष्य जीवन से किए गए पुण्यों के प्रभाव से हमें प्राप्त होती हैं, पर धीरे 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 हम जब इस प्रत्येक क्रिया से मुक्त हो जाए, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक साधु जा रहा था, उसने दूर से देखा कि एक बड़ी सुंदर मछली कूदी। साधु ने मछली को देखकर सोचा है कितनी सुंदर मछली है, बड़ा उसे आनंद आया। दो क्षण के बाद ही उसने देखा कि वो मछली के प्राण निकल गए और वो पानी में मरी हुई ऊपर तैर रही थी। साधु चौंका, आगे चला। आगे गया तो उसने देखा कि एक चिड़िया अंडा दे रही थी, वो फिर खुश हुआ। पर उसी समय वो अंडा, मतलब बच्चा निकला ही था कि वो नीचे घोंसले से गिरा और वो भी मर गया। साधु फिर चौंका। आगे गया तो देखा एक गैया बछड़ा दे रही थी, साधु बहुत खुश हुए, तो शगुन है, गाय बछड़ा दी, शगुन है। दो मिनट बाद वो बछड़ा पैदा हुआ, दौड़ा ही था कि एकदम पीछे मुंह मार रहा था, गैया उसको उठा रही थी कि समय एकदम टेढ़ा पड़ा और मर गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। आगे गया तो एक राजा, राज्य में उत्सव हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्या है। पता चला कि राजा के यहाँ एक बेटा हुआ है, तो उसने कहा मैं वहां जाऊं। फिर मन में घबराहट हुई कि तीन तो मेरी वजह से मर गए, राजा का बेटा और मरा, तो फिर तो सूली पर ही ना चढ़ा दिया जाऊं। ऐसा सोच के वहां नहीं गया, पर साधु सेवी था राजा, उसने खबर भिजवाई कि संत आए, आइए मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। दूतों ने आकर प्रार्थना की तो साधु मना ना कर सका, सीधा पहुंचा राजा के यहाँ। उसी समय राजा ने उठा के बच्चे को गोदी में रख दिया। गोदी में जैसे ही उसने लिया, दो खुश हुआ और बच्चे ने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूं आपके मन में क्या उहापोह है, वो मछली भी मैं था, वो चूजा भी मैं था, वो बछड़ा भी मैं था, आपने मुझ पर ऐसी कृपा करी है, आपने मुझ पर मेरे कर्मों को काटा है, पहले मछली बनकर मैं पानी में डूबा रहता, आपने कृपा करी तो मैं उस योनि में गया जो हवाओं में उड़ती, फिर आपने कृपा करी तो मैं उस योनि में गया कि पूज्य गैया का वंशज हो गया, पर उसके बाद भी खेतों में मेहनत करता और गोबर में सना रहता, आपने कृपा करी तो राजा का बेटा होकर के पैदा हो गया। इतना बोलने के बाद उसने अपने पिता को आज्ञा प्रार्थना की कि ये मुझ पर कृपा करने आए, और उसने शरीर छोड़ दिया, देवताओं का रूप लेके प्रकट हुआ, आज आपने कृपा कर दी तो मैं मोक्ष को प्राप्त करके अपने मूल तत्व में वापस विलीन हो रहा हूँ। जन्म मृत्यु की क्रिया इस प्रकार से चलती रहती है, बार बार 84 लाख योनियों में व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहता है। जिस क्षण वो जन्म मृत्यु की क्रिया से मुक्त हो जाए, उसी को मोक्ष कहा गया है। सामान्य रूप से व्याख्या यही है, और मैं अगर गंभीरता वाली बात कहूं तो मेरा ऐसा मानना है कि अभिमान की निवृत्ति मुक्ति है। द्विपदे बंध मोक्षाय सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ममेति बध्यते जीव न ममेति विमच्छते। जिस दिन आपके जीवन में से अभिमान की निवृत्ति हो जाएगी, आप परम मुक्त हो जाएंगे, उससे बड़ी मुक्ति का आनंद दूसरा नहीं हो सकता। परम मुक्त हैं अगर आपके भीतर अभिमान नहीं है तो इस प्रकार मुक्ति सालोक्य, एक मुक्ति होती है कि जिस ईश्वर की आपने पूजा की है उसके लोक को पा लेना, गोलोकवासी, साकेत, ये शब्द सुने होंगे ना आपने, कोई मर जाता तो हम कहते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गीय, कितना कॉमन चीज है स्वर्गीय, इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। फिर एक मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति, जैसे कभी कभी कहानियां आती हैं कि इस तरीके से चार भुजा कोई पार्षद देवताओं का रूप उसने धारण कर लिया, वो देवताओं के रूप को पा गया। एक होता है सामीप्य, ईश्वर की समीपता पा लेना। इसी में एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रह्मलीन हो गए। ये स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, इसका मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वो नदी, वो बूंद जहां से निकली थी वो फिर से मिल गई। तो आत्मा में रहना बंधन है, परमात्मा में रहना मुक्ति।
महाराज जी आपने मृत्यु की बात करी, ऐसे एक बड़ी कॉमन सी चीज देखी थी, ऐसे मन में सवाल आ रहा है, कुछ लोग मृत्यु जब हो जाती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी का मलमूत्र के स्थान से मल निकल जाता है, इन सब का क्या अलग अलग मतलब है कि ये अच्छा आदमी था ये बुरा आदमी था, इसे स्वर्ग मिलेगा इसे नर्क मिलेगा?
देखिए हमारे भीतर प्राण है, प्राण हमारे मूलाधार चक्र में है, और जब शरीर से कुछ निकलता है तो प्राण ही तो निकलते हैं। लीवर तो वहीं है, किडनी तो वहीं है, सब तो वहीं है। जब मर गया, ये चले गए भैया, आप चले गए कहाँ, क्या चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है, मुंह भी यहीं है, जीभ भी यहीं है, जिस चीज़ को आप देखकर प्यार करते थे वो भी यहीं है, हार्ट भी यहीं है, लीवर भी यहीं, किडनी भी यहीं, बोन भी यहीं, एवरीथिंग इज़ हियर। जो लाइफ नाम की चीज़ थी जिसको हम प्राण कहते हैं वो निकल जाती है। योगी क्या करता है, साधना करते अपने प्राणों की ऊर्जा को ऊपर बढ़ाता है, बढ़ाता जाता है, सेलिवेसी करके, ब्रह्मचर्य रहकर, चीज़ों को विकसित करके, धीरे 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 धीरे। आप एक चीज़ देखिए, व्यक्ति के वीर्य में प्राण है ना, अगर वीर्य और रज में प्राण नहीं होते तो वो दोनों मिलकर के एक प्राणी का निर्माण कैसे कर देते। धीरे धीरे आपका निर्माण भी उसी से हुआ है, आप उसी के द्वारा निर्माण भी कर रहे हैं। धीरे 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 आपकी प्राण ऊर्जा आपकी चेतना में धीरे धीरे ऊपर घूमती रहती है। हमारी प्राण ऊर्जा केवल काम में ही स्थित है, तो जिसके प्राण अधोगति से निकलते हैं उसका मलमूत्र निकल जाता है। कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता था, चेतना थी उसकी, उससे श्रेष्ठ है कि जब मुख से निकल जाते हैं, उससे और श्रेष्ठ है नासिका से निकल जाते हैं। पर सबसे श्रेष्ठ पता है क्या है, हमारे सिर के बीच में एक छिद्र है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। बच्चे का कहते ना यहाँ से ऐसा कोमल है, आपने देखा होगा सन्यासी को कभी देखो, सन्यासी को कभी लिटा के नहीं ले जाया जाता, सन्यासी को बैठा के ले जाया जाता है। क्योंकि योगी जो होता है वो श्वासों के द्वारा जब मृत्यु का बोध होता है तो निर्मोही होकर अपने प्राणों को खींचता है और अपने प्राणों को यहाँ से शरीर से निकालता है, इसलिए वो बैठ करके जाता है, क्योंकि उसके प्राणों का संचार उसकी यहाँ से हुआ है। मेरे जब बाबा गए थे तो मैंने इसका दर्शन किया था, मेरे सामने गए थे वो, लेट कर उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। जब बिल्कुल ही स्थिति ऐसी हो गई, डॉक्टर ने कहा हिलने लगा, तो हाथ पकड़ के हम लोगों को उन्होंने कह रखा था, हमने उनको बैठा दिया, उन्होंने ज्ञान मुद्रा बना ली, आंखें बंद कर ली, बैठे रह गए। ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं। तो प्राणों का रंध्र यहाँ से, तो इसी को कहते हैं अधोगति, सदगति, दुर्गति, ये सब शब्द जो आए वो इसी की व्याख्या में आए। जब कोई जीवन में ऊर्जावान व्यक्ति होता है तो उसके प्राण यहाँ से, और कहते हैं जिसके प्राण यहाँ से निकलते हैं उसको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सीधा ऊंचे लोकों की, सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती
है। वैकुंठ क्यों जाना है, क्या है वैकुंठ में ऐसा?
दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, युद्ध नहीं है, आराम है, सुख भी है और शांति भी है। यहाँ सुख और शांति की कल्पना है,
कृष्ण है वहाँ,
आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सुख और शांति है वहाँ आनंद नहीं है।
बिल्कुल है,
नारायण लेटे हैं ये शांति है, लक्ष्मी चरण दबा रही है ये सुख है, और जहाँ सुख और शांति चरम सीमा पर है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है उसी का नाम कृष्ण है। और कृष्ण तो यहाँ भी है, जो सब जगह है वहाँ कृष्ण है। जैसे ही अचानक स्वाभाविक रूप से सुख और दुख से ऊपर उठते ही आपके होठ थोड़े से पीछे जाके आप मुस्कुराते, समझ लो कृष्ण सामने आ गए। हम किन कल्पनाओं में फंसे हैं, चलते चलते अचानक किसी की ऊर्जा, किसी की पॉजिटिविटी आपके मन को खींच ले रही है, समझना कृष्ण संग घूम रहे हैं। ये सकारात्मकता कृष्ण है,
ये आनंद, ये उत्साह, ये सब कृष्ण है, ये सब कृष्ण है।
आपने वो प्राण वाली बात करी ना, तो ऐसे हिंदी हिंदी का एक शब्द है निधन, इनका निधन हो गया, यानी कि शरीर का जो धन है वो प्राण है या आत्मा जिसे हम कहते हैं वो अब चली गई है, तो कहते हैं निधन हो गया। तो एक शब्द से कितनी बड़ी मीनिंग छुपी हुई है। महाराज जी, आपने जैसे छोटी छोटी बातें कही हैं कि माता पिता के पैर छू लेना, जब हम ज्योतिष करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो लोग बड़े वो हैं, पागल हैं, उपाय बताओ उपाय बताओ, ये समस्या है उसका उपाय बताओ। अब ज्योतिष में 9 ग्रहों के उपाय अगर आप सुनोगे तो यही सब उपाय, पिता को सेवा करो, पिता के पैर दबाओ, सूर्य ठीक हो जाएगा, माता की आज्ञा मानो, माता की चरण दबाओ, हर तरह से माता का सम्मान करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा, भाई बंधु दोस्त यार इनका सम्मान करो, इनके साथ कपट मत करो, मंगल ठीक हो जाएगा, बहन का बेटी का इनका आदर करो, सम्मान करो जितना हो सके, आपका आपका बुध ठीक हो जाएगा। हर जैसे राहु तक को कहा गया कि उस ससुराल का सम्मान करो, ससुराल से जो मिले प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो, किसी चीज़ की मांग मत रखो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। केतु है कि आप जो पंडित जी हैं, जो संत महात्मा हैं, इनका सम्मान करिए, इनको किसी तरह से अवहेलना मत करिए। गुरु तो गुरु है, आप अपने टीचर्स का मेंटर का सम्मान करिए, गुरु ठीक हो जाएगा आपका। शुक्र है, आप अपने जो जिससे विवाह किया आपने, जिससे आपने प्रेम किया उसका सम्मान करिए, उसकी बात ठीक करिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि हैं आपके पिता के जो भाई बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, आप इनकी बातें सुने, इनका सम्मान करें, वो ठीक हो जाएगा। हर एक ग्रह को रिश्तों से जोड़ा गया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और ये ज्योतिष भी क्या जीवन जीने की कला बताता है, अगर इंसान यही कर ले। जैसे हमारे ज्योतिष में शुक्र ग्रह, शुक्र को मानते हैं कि लक्ष्मी जी का रूप है एक, और ये शुक्र के पीछे दुनिया भाग रही है, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा मोबाइल वोबाइल आ जाए अच्छा महंगा। शुक्र को गाय से जोड़ा गया,
हाँ,
और कहा गया कि गाय की आप सेवा करें तो आपका शुक्र बलवान होगा, आपके पास धन आएगा, समृद्धि आएगी। अब अगर इसको सोचा जाए तो हम जब छोटे थे तब से घरों में बातें चलती थी कि घर की पहली रोटी गाय को जाएगी, तो हम तो कब से उपाय करते चले आए हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपकी बात में एक चीज़ ये जोड़ूंगा, सम्मान करने का एक अर्थ क्या है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि संबंध सेंसिटिव है, मानो नहीं बन रही ससुराल से, नहीं बन रही चाचा से, नहीं बन रही किसी और संबंधी से, सुविधा ही नहीं है कि गैया पास रख सकें। तो मेरा तो ऐसा इसमें एक चीज़ जोड़नी है कि चलो आप संबंध इतना सेंसिटिव हो गया है कि आप बातचीत नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके दुर्गुणों को भुला के उनके अच्छे गुणों का स्मरण कर लीजिए कि वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, बात मत कीजिए, उनका अपना दोष है, उनके गुणों का विचार कर लीजिए, ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान। राम ने रावण से द्वेष नहीं किया, आप द्वेष मत कीजिए, युद्ध किया। द्वेष करना और युद्ध करना अरुण भैया दो बड़ी चीजें, हम आज के समय युद्ध नहीं कर सकते, द्वेष पालते रहते, युद्ध करने की औकात ही नहीं, युद्ध कहां से करोगे, युद्ध हम अपने कर्मचारी से नहीं कर सकते, युद्ध तो करने की तो औकात ही नहीं रही आदमी के पास। द्वेष करते करते मन सड़ाते रहते, मन को खुश रख के सब संबंधों को कर लीजिए। आपने जबरदस्त बात कही है, इस यही बेस्ट अप्रोच है, इसके भीतर कोई मिथ जैसा नहीं लगता। आज का युवा भी इन चीज़ों से जुड़ सकता है, और आज स्ट्रेस डिप्रेशन इन कारणों में जो फंस रहा है क्योंकि उसने रिलेशनशिप को महत्व देना बंद कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें उसको इम्पैक्ट दे रही हैं। आपने जो बात की बिल्कुल सहमत है कि आप घर में माता पिता इन सब चीज़ों से जुड़िए, आज का युवा कितना आगे तक चला जाएगा, ऊँचाई तक चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। राम जी रिलेशन को मेंटेन करने में लगे रहते, सब व्यक्ति को आप कितना प्रसन्न रखेंगे उस दिन, आप रामनवमी के दिन आपके घर में जो कर्मचारी हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको थैंक्स कर दीजिए। राम जी, एक ही तो अंतर था कि राम जी युद्ध में कुछ नहीं करते थे, आपको पता है राम जी ने युद्ध में कोई लड़ाई नहीं करी। सीता जी को भी वो ये कहते हैं कि रावण मारा गया, मैंने नहीं मारा, कोई युद्ध नहीं, कोई प्रोमिनेंट की लड़ाई चल रही है। राम जी ने पूरे युद्ध के टाइम एक एक बानर को रोज जाके पूछते, तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ चाहिए, तेरी कोई हेल्प कर दो, तेरे लिए कुछ कर दो। आप रामनवमी वाले दिन भैया आपके जो सबसे लोएस्ट डिग्री के एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 5 मिनट के साथ बात करिए ना, राम जी कितने खुश हो जाएंगे। उस दिन थोड़ा वॉचमैन ड्राइवर के साथ बैठ लीजिए, मैं बड़े लोगों की बात करूँ तो जरा उस दिन आप किसी जो रोज़ आपको कोई आपका बस वाला जो ले जाता हो स्कूल,
या कोई आपका ऑफिस ऑटो वाला ले जाता, जरा सा उसको बढ़िया प्रेम से बात करिए, भैया तो ठीक चल रहा है, एनीथिंग, हेल्प करने की क्या जरूरत है, दो मिनट वो अपने दुख बताएगा, मोटिवेट कर दीजिए उसको। कितनी जोरदार सेवा, राम जी ने सेवा का ध्यान रखा। मैं कहता हूँ जन्माष्टमी मनानी हो, जैसे इसके साथ कह दे रहा हूँ रामनवमी के बाद है, मैं अपने हर व्यक्ति को एक निवेदन करता हूँ कि जन्माष्टमी में आज आप किसी की स्माइल का रीजन बन जाइए, इससे बढ़िया जन्माष्टमी नहीं हो सकती। क्योंकि श्री कृष्ण आनंद में रहने वाले, नंद घर आनंद भय, आज कोई आदमी आपसे आनंदित होना चाहिए तो आनंद आ जाएगा। मैं जब छोटा था अरुण भैया, तो पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा जो तुम्हें फोन करे ट्राई करना कि बात करते हो वो एक बार हंसना चाहिए, तब तो तुमको फोन करने का फायदा है, रुलाने के लिए तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है। और मेरे आसपास वाले व्यक्ति जो मुझसे बात करते हो चीज जानते, मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी हल्की सी बात भी कर दूँ, जोक सुना दूँ, कोई बात को ऐसा घुमा दूँ कि एक बार वो ही कर जाए, बस बात बन गई, फोन मिल गया, बात हो गई। इन सब चीज़ों को बड़ा कीजिए, क्या सुंदर बात हो जाएगी, क्या बढ़िया बात हो जाएगी। संबंधों को निखारना राम की सबसे बड़ी पूजा है। और क्या तो आपने बढ़िया उपाय बताया, मैं तो आपसे लिख के ले जाऊंगा, और मुझे कोई ज्योतिषी बोलेगा कि तुम्हारा राहु नीचे, क्या था ससुराल के लिए कौन सा है,
ससुराल का सम्मान करें,
हाँ ससुराल का
जो भी मिले प्रसाद की तरह ले ले।
और क्या गैया, हम लोग गैया से, तभी मैं सोचूं कि मेरे सबरे ग्रह क्यों अच्छे चल रहे हैं क्योंकि मैं परिवार में कोशिश करता हूँ कि सब ठीक रहे। और बहुत अच्छी माता पिता से ऊंचा क्या है, कुछ नहीं धरती। मैं भूल रहा हूँ मैंने किससे बात सुनी थी अभी 10-15 दिन पहले सुनी थी कि माता को निष्ठा दो, बाप को प्रतिष्ठा दो, ये दो चीज सदा संभालने की जरूरत है।
इसमें एक चीज और है महाराज जी कि जब तक आपके सिचुएशन अनुकूल है तब तक तो आप बड़ा सम्मान दोगे, सेवा करोगे, हंस के भी बात करोगे, लेकिन कभी पिताजी का मूड खराब होगा, या मान लो पिताजी का मूड ही ऐसा खराब ही रहता है हमेशा, उस समय आप अगर उनको सम्मान दे रहे हो तो वो असली प्रेम है, वो असली श्रद्धा है। चीजें अनुकूल है तब तो सब इज्जत दे रहे हैं, जब चीजें प्रतिकूल है तब क्या इज्जत दे रहे हो आप,
इज्जत का पता ही तभी चलता है।
तो जैसे हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, एक दिन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, आपका गुस्सा सामने आ गया, तो यहाँ पर आपको अपने आप को जज करना है तो ऐसे जज मत करो कि जब चीजें अनुकूल चल रही हैं, जब प्रतिकूल चल रही तब कैसे थे आप।
प्रतिकूलता जज के लिए तो धीरज धर्म मित्र और नारी, पुरानी बात है, आपत्काल आपत्काल पर रखिए। विपत्ति तो सेल्फ एनालिसिस के लिए ही जीवन में आती है। बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ रशियन, लियो टॉल्स्टॉय, उसकी कहानी ये कहती है कि उसकी पत्नी बड़ी खराब थी, जब वो कुछ लोगों से मिलने आते थे, स्टूडेंट्स मिलने आते थे, तो बड़ा उल्टा सीधा बोलती थी, तो लोगों ने कहा ऐसी स्त्री के साथ क्यों रहते हो, तो टॉल्स्टॉय बोला ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी कसौटी का पत्थर है, रोज मुझे ये एग्जामिन करा देती है कि आज मेरा पेशेंस लूज तो नहीं हो गया, आज मेरे पास उतना पेशेंस है कि नहीं, मैं तो रोज इसको थैंक यू बोलता कि इतने के बाद भी मैं आज विक्षिप्त नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, मेरे शब्द मेरे मुंह तक नहीं आए, मैं सहन कर गया, मुस्कुराता रहा, तूने मेरी ऊर्जा को कितना बना दिया आगे, कि नॉर्मल आदमी मेरे से मेरा मूड ही नहीं ऑफ कर सकता, आज बड़ी प्रॉब्लम है ना, तुरंत मूड ऑफ हो गया। मतलब कि हद्दी इतनी ज्यादा इरिटेटेड आदमी है, रेस्टोरेंट में कोई वेटर आया और उसने जरा कम स्माइल देके आपके सामने मेन्यू रख दिया, आपका मूड ऑफ हो गया यार, ये मूड है कि ऑफर डस्टबिन नहीं है क्या। टॉल्स्टॉय कह रहे तूने मुझे कितनी प्रैक्टिस करा दी कि आदमी मेरा मूड ही नहीं ऑफ कर सकता, मैं तुझे धन्यवाद करता। विपत्ति को, समस्या को तपस्या में बदल लेना राम का नाम है, ट्रेजेडी को रेमेडी बना लेना, ये राम का चरित्र हमको सिखाता है। वो सब प्रॉब्लम्स को वो एकदम से मिला करके नई चीज क्रिएट कर, और दुनिया में जितनी भी क्रिएशन हुआ है कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही हुआ है, ध्यान दीजिए, कोई ट्रेजेडी से हुआ। न्यूटन ने देखा फल गिरा तो कुछ बन गया, किसी ने कुछ देखे थे, चाय की पत्ती ऊपर से गिरी और पानी में उबलने लगी तो चाय पत्ती बन गई। कोई ना कोई ट्रेजेडीज ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे हौसले तैयार किए। बहुत हल्का रखिए अपने आप को, आसानी से आप आसानी से हंस सकें, आसानी से गुस्सा नहीं हो सके, उस दिन आप मानिएगा कि आज आप राम के पथ पर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा ही मत हो, पर आपको गुस्सा करना इतना आसान नहीं हो, आपको कामुक करना इतना आसान नहीं हो, आपको अविवेकी बनाना इतना आसान नहीं हो, आपको लोभी बनाना इतना आसान नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हमको भगवान ही होगा कि हमें दोषी नहीं, मेरे में भी होंगे। इतनी सी तो बात है, व्यक्ति और संत में इतना ही फर्क है कि उसको लोभी इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता, और अगर आसानी से लोभी बन गया तो फिर उसके संतत्व में प्रश्न करना पड़ेगा। काम से जो शरीर का जन्म हुआ, उस शरीर से काम कैसे खत्म हो सकता है? जबरदस्ती की बकवास नहीं करनी चाहिए, पर काम ही बनाना इतना आसान नहीं हो। कम से कम हम इतना तो कर सकते कि जैसे हमें खुश करना कठिन है पर गुस्सा करना आसान है, इसका मतलब ये दोनों क्वालिटीज हम में हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए कि हमको अब गुस्सा करना कठिन हो, खुश करना बड़ा आसान हो। हम बहुत बड़ी चीज पे गुस्सा होते हैं और बहुत छोटी चीज पे खुश हो जाते हैं, होता उल्टा है कि नहीं? हम बहुत बड़ी चीज पे खुश होते हैं और बहुत छोटी सी चीज पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत छोटी सी चीज पे। एक आदमी गिफ्ट लेके आया 6x6 का, बड़ा खुश हुआ, क्या गिफ्ट लेकर आया। उसको खोला तो उसमें 4x4 का डिब्बा निकला, उसे खोला 2x2 का डिब्बा निकला, अंदर झुंझुना निकला, तो गुस्सा हो गए। बहुत छोटी चीज ने हमको कितना आसानी से क्रोधित कर दिया। तो आप सदा लाइफ में, हम आगे बढ़ते रहें, खुश रहना आसान बनाइए अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा इशू मत बनाइए। ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण है।
दो चीजें मुझे लगती है ना बड़ी जरूरी हैं, एक तो ये सहनशीलता, एक शब्द है सहनशीलता, पर इसका भावार्थ अगर कोई समझने जाएगा तो बहुत बड़ी शक्ति है ये एक क्वालिटी अगर आपके अंदर आ जाए ना तो आप बहुत ऊपर चले जाते हो। और दूसरा इच्छा शक्ति, अगर आपको इच्छा शक्ति आपकी तगड़ी है, आप 1000 बार कोई गिरा दे आप गिरते नहीं हो, आप दोबारा खड़े हो जाते हो। तो ये दो क्वालिटी अगर इंसान को प्रैक्टिस करने में आ जाए, समय लगेगा है ना, एक पेशेंस है, दूसरी विल पावर है, लेकिन अगर आ जाए तो ये गजब की रिजल्ट देती है।
भगवान की भक्ति के ये दो प्रसाद हैं भैया, जो प्रभु पर भरोसा करता है वो ये दोनों चीज आराम से पा लेता है, बड़े आराम से पा लेता है। कहीं ना कहीं जब हमारी श्रद्धा टिक जाती है तो निश्चित रूप से भरोसा भी बन जाता है। हम उसकी विल पावर पे करते नहीं, नहीं भगवान मेरे साथ होगा, मुझसे करा लेंगे।
अब यही श्री राम जी को सोचो, कल राजा बनने वाले हैं, कल राज अभिषेक होने वाला है, आज न्यूज मिल रही भैया 14 साल के लिए जाना है वनवास में। अब ये सहनशीलता नहीं होगी तो आज के जमाने में कोई करके देखे मंत्री जी की शपथ होने वाली है और मंत्री जी से बोल दो कि नहीं मंत्री जी अब आपका नहीं होगा,
मूड खराब होगा,
मंत्री जी लड़ पड़ेंगे,
मंच पर चट्टी देने लग गए
आंदोलन होगा, अनशन होगा, सब कुछ होगा। तो ये राम जी की सहनशीलता है यहाँ पे कि हंसते हंसते सह लिया। अगर नहीं सहते तो ऐसे तो दुनिया भर के राजा थे, वो भी एक राजा बने रह जाते, इनके नाम कोई नहीं जानता।
पुरानी कविता की लाइन है ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये चीजें धाराओं को प्रतिकूलता ही नाविक की धैर्य की परीक्षाएं लेकर के आती। ऑलवेज ये सब चीजें बेटर रिजल्ट हमें देती हैं, कस्टम आराम से काम हो। एक चीज ये बताइए, मशीन से बनी चीज सस्ती होती है, हाथ से बनी चीज महंगी होती है, होती है कि नहीं होती?
हैंडीक्राफ्ट
उसकी कीमत दूसरी है, इसीलिए है क्योंकि उसमें धैर्य लगा है। हैंडीक्राफ्ट करने के लिए पेशेंस चाहिए, विल पावर चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, इसके बिना वो निर्माण संभव नहीं है। धैर्य व्यक्ति को कीमती बनाता है, धैर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। और मैं एक बात कहूँगा, धैर्य और विल यही सब का नाम मनुष्य है, इसी का नाम मानव है, इसी का नाम ह्यूमन है। ये नहीं है तो आप दो पैर में पता नहीं आप ह्यूमन हैं भी कि नहीं, ये हमें विचार करने की बात है।
अब विल पावर राम जी में दिखती है कि सामने पूरे लंका का राजा, न जाने कितनी तिलस्मी ताकतें उसके पास, और यहाँ पे बंदरों की सीना लेके लड़ पड़े।
बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ प्रोग्रेस के लिए गए थे। केकई जी ने 14 वर्ष मांगे, इसीलिए तो मांगे थे 14 वर्ष। आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इन 14 चीजों का नाम 14 वर्ष है। केकई जी ने कहा था कि पहले इन 14 को जीत लो, तो एक आदमी उसके पास स्ट्रेंथ बहुत है पर कंट्रोल नहीं है। राम जी वो हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होने के साथ साथ कंट्रोल भी पूरा है। तो अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा ने युद्ध करके जीता है। अनियंत्रित असीमित ऊर्जा भी किसी काम की नहीं आ सकती, और नियमित मर्यादित कंट्रोल्ड सीमित ऊर्जा भी बहुत बड़ा विकास प्रदान कर सकती है।
तो महाराज जी, आपके पास कुछ प्रयोग हैं लोगों को बताने के लिए कि वो नियमित कर सकें अपनी ऊर्जा को, कंट्रोल कर सकें? क्योंकि मन बड़ा भागता है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, और सारा दुख इसी से जुड़ा है।
मैं एक चीज आपसे निवेदन करूं, एक तो भोजन और एक निद्रा, ये दो चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत सारा नेचर में हमें अपने डिफरेंस आने लग जाएगा, बिल्कुल सीमित सा प्रयोग है। नींद को एक थोड़ी देर की भी हो पर गहरी लेना शुरू कीजिए। उसके लिए टेक्निक्स अपनाइए, जो टेक्निक आपको अच्छी लगती हो, म्यूजिक अच्छा लगता हो, योग अच्छा लगता हो, एक्सरसाइज अच्छी लगती हो, रीडिंग अच्छी लगती हो। आज नींद और भोजन, इन दोनों चीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है। भोजन बिगड़ चुका है, हम पैक्ड खा रहे हैं, लाके खा रहे हैं, पुराना खा रहे हैं, अनियमित खा रहे हैं, अव्यवस्थित खा रहे हैं। भोजन बिगड़ने से और नींद, इन दो का हमारे मन के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव है। अच्छा, और ये दो चीज ही ऐसी हैं अरुण भैया जो न कम अच्छी है न ज्यादा अच्छी है, इसलिए नियंत्रण इन दो चीजों का है बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में आप नियंत्रण देखना शुरू करेंगे। अच्छा, नींद अगर 7-8 घंटे की है तो 7-8 घंटे की ठीक है, अगर आपने उसको 10-12 घंटे लेना शुरू किया तो आप दिन भर आलसी रहेंगे, और अगर आपने उसको 3-4 घंटे ले लिया तो भी आप दिन भर आलसी लेंगे, दिन भर परेशान रहेंगे। भोजन भी एकमात्र ऐसी वस्तु है, अगर आपने बहुत ही कम खा लिया तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, और अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आपके शरीर में आलस्य आ जाएगा। तो आप इन दो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देकर किसी भी प्रोसेस को जो आपकी लाइफस्टाइल में सूट करती हो, इनको अपनाना शुरू कीजिए। व्यवस्थित भोजन और व्यवस्थित निद्रा। आज की उहापोर दौड़ा भागी के जीवन में मैं स्वयं भी आपसे कहूं कि मैं इनको एक समय पर नहीं ले सकता, पर यह कह रहा हूं कि जब ले रहा हूं पूरे आनंद से ले रहा हूं, पूरी गंभीरता से ले रहा हूं। ये बिल्कुल नियमित दिनों में होने वाली चीजें हैं, और दिन में सबसे ज्यादा होने वाली चीजें हैं भोजन और निद्रा। ये दो चीजें हम सबसे ज्यादा दिन में इनके साथ में होते हैं। इनमें से भी अगर आप कहिए कि कोई एक चीज पहले शुरू करनी है तो वो मेरे हिसाब से अच्छा भोजन है। निद्रा भोजन को प्रभावित कई बार नहीं करता, पर भोजन निद्रा को प्रभावित करता। यहीं से हर चीज का नियम यहां से शुरू होता है सनातन संस्कृति में। इसलिए हमारे यहां कोई पर्व हो सबसे पहले भोजन की बात उठती है, आज ये नहीं बनाओ या आज ये बना लो, आज नवरात्रि है व्रत रख लो, आज एकादशी है ये मत खाओ, आज सोमवार है ये मत छुओ, चाहे ज्योतिष चाहे वास्तु चाहे कर्मकांड चाहे कोई भी प्रकार की व्यवस्था हो, पहला प्रभाव आपको वेद क्या बोलते हैं, भोजन। कहीं से भी शुरू हो जाइए, पहली चीज की शुरुआत भोजन से होगी, और उसका हर जगह प्रभाव होता है, हर जगह प्रभाव होता।
जैसा आहार वैसा व्यवहार, वैसे विचार
वैसे विचार, जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल मूल की बात। पर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ये दो चीज पर ध्यान रखता है, ध्यान दीजिएगा। ये अनुभव मैंने परसों ही किया, जो आपसे मैं बात कह रहा हूं ये मैंने अनुभव परसों किया। मैं कहीं से आया जो रात भर चल के सुबेरे पहुंच पाया, तो मेरा ड्राइवर को मैंने 4 बार कहा कि तू खा ले, उसने कुछ नहीं खाया दोपहर के बाद से, वो खाऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी चलाने के लिए भी ये दो चीज ड्राइवर साधता है, किसी का भी ड्राइवर हो, भोजन और निद्रा। वो ऐसा खाता है नींद नहीं आए, इतना सो लेता है कि गाड़ी चला सके, है कि नहीं? ऐसे जीवन की गाड़ी भी ये दो चीज से सद सकती है। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन आपसे निवेदन करूंगा, हमें चीजों को सहना आ जाएगा, हम थोड़ा चेतनशील हो जाएंगे, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ज्यादा होने लगेगा। भोजन और निद्रा, ये दो चीजें साधनी जरूरी है।
बात क्या है ना कि फैंसी नहीं लगता सुनने में ये, लोगों को आसान से ऐसी बातें बता दो ना कि गाय की सेवा करो, अपने भोजन पे अपनी डाइट पे ध्यान दो, माता पिता की सेवा करो, मजा नहीं आता इसमें। उनको सुनना कुछ फैंसी, पंडित जी कोई ताबीज बताओ वो पहन ले गले में, कोई पत्थर बताओ पहन ले हाथों में, तो हमारा कुछ हो जाए। तो ये सोच में हमें सोचना चाहिए कि उपाय बहुत बड़े बड़े कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, आपकी समस्याएं भी इसी इग्नोरेंस से ही आ रही हैं।
पेन किलर खाने की आदत है ना, एंटीबायोटिक नहीं खानी उनको।
चलिए, मेरा एक बड़े दिनों से एक प्रश्न है कि राम ने भी प्रेम किया, श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया, इन दोनों का प्रेम अलग है, कुछ कोई डिफरेंस है इसमें, या कोई एक ही चीज है?
प्रेम कभी दो नहीं हो सकते, प्रेम कभी कम नहीं हो सकता, प्रेम कभी ज्यादा नहीं हो सकता, प्रेम कभी छोटा नहीं हो सकता, प्रेम कभी बड़ा नहीं हो सकता। प्रेम केवल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये दो बिल्कुल साफ बातें हैं। दोनों की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, ये नहीं आप कह सकते राम का प्रेम कम है ये कृष्ण का प्रेम कम है, दोनों एक परिस्थिति। बल्कि आप यहां देखिए तो राम ने यहां सीता जी को दूर जाना पड़ा, वहां श्री कृष्ण को दूर जाना पड़ा। दोनों की अलग अलग स्थिति थी, वहां सीता जी गई छोड़कर और यहां श्री कृष्ण गए छोड़कर, दोनों अलग अलग परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, प्रेम कभी अलग अलग नहीं हो सकता। और बड़ी से बड़ी परिस्थिति को पचाने की ताकत प्रेम दे सकता है। प्रेम था इसलिए राम जैसी परिस्थिति भी राम का प्रेम, सीता का प्रेम पचा सका। प्रेम था इसलिए बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी राधा और कृष्ण का प्रेम एक दूसरे को आपस में पचा सका। परिस्थिति अलग हो सकती है, प्रेम नहीं अलग हो सकता।
प्रेम और विवाह में क्या फर्क है?
विवाह एक नैतिक, सामाजिक, धार्मिक संदर्भ है, प्रेम एक आत्मिक संदर्भ है। प्रेम आत्मा से होता है, प्रेम का शरीर से कोई संबंध नहीं है। विवाह एक शारीरिक भी है, वंश वृद्धि भी है, कुल वृद्धि भी है, सामाजिक वृद्धि भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो लोगों का मिल करके ऊर्जावान बनना भी है, साथ रह लेना भी है, ये अच्छी चीजें हैं। ऐसा समझिए विवाह एक संबंध है, प्रेम एक भावना है। प्रेम की भावना हर संबंध में अप्लाई होती है। भाई भाई एक संबंध है, उसमें प्रेम की भावना मिलाइए। इसको और इजी करूं तो प्रेम चीनी को कहते हैं। चीनी दूध में भी मिलती है, चीनी चाय में भी मिलती है, चीनी शिकंजी में भी मिलती है, चीनी शरबत में भी मिलती है, चीनी आइसक्रीम में भी मिलती है। ऐसे ही प्रेम की चीनी हर संबंधों में मिला दीजिए तो वो मीठा हो जाएगा। विवाह एक संबंध का नाम है, बहुत अच्छा संबंध। दोनों आप दो जन आपस में मिल जाते हैं तो विवाह हो जाता है। दो मित्र हैं, प्रेम नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। दो कर्मचारी हैं, प्रेम नहीं है, मामला बिगड़ जाएगा। तो प्रेम तो चीनी की तरह है, उसे घोल लीजिए। वो संबंध को अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो प्रेम की चीनी को घोल लीजिए। आजकल शुगर बढ़ रही है इसलिए लोग ज्यादा फीका पी रहे हैं।
मेरे मन में एक सवाल आता है कि राम जी के तीन भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हमें लक्ष्मण जी का प्रसंग मिलता है, भरत का भी प्रसंग मिलता है, शत्रुघ्न का बहुत कम प्रसंग मिलता है, ऐसा क्यों?
शत्रुघ्न को मौन पात्र कहा है, और ऐसा नहीं है रामचरित मानस में उनको ज्यादा स्पर्श नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, पर वो इतना महान चरित्र है कि उसके ऊपर थोड़े से कहने में न्याय नहीं हो सकता। ऐसा मेरे बड़े गुरुजी कहते थे। इसलिए कभी कभी ऐसा विषय होता है ना कि भैया इसको कम ही छेड़ लो, ज़्यादा छेड़ोगे तो राम की कथा ही कहीं डाइवर्ट ना हो जाए शत्रुघ्न की कथा पर, क्योंकि वो इतना महान चरित्र है, सबसे छोटा पात्र है, मौन पात्र है। दूसरी बात है, अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें बहुत चरित्र शत्रुघ्न के प्रतीत होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसमें खास जब जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में हैं उस समय स्वयं शत्रुघ्न भैया गए हैं और उन्होंने कुश और लव को पहली बार गोदी में लिया है, पहली बार उन्होंने धारण किया है। मथुरा के ऊपर लवणासुर नाम का एक राक्षस था, उसका शत्रुघ्न जी ने युद्ध करके वध किया है। इस प्रकार के प्रसंग वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे सूत्रात्मक रूप में प्राप्त होते हैं। ये चार भाई चार पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। श्री राम मोक्ष के प्रतीक हैं, श्री भरत धर्म के प्रतीक हैं, श्री लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं और श्री शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं। ये चारों अपने अपने तरीके से अपने अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते रहते हैं।
थोड़ा समझाइए।
वो जीव दशरथ है जिसकी दश इंद्रियां हैं, उसकी तीन पत्नी है, एक पत्नी सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, ये तीन पत्नियां हैं। इन तीन पत्नी सत्व रज तम के द्वारा दश इंद्रियों वाले जीव ने चार पुरुषार्थों को करने का संकल्प किया है, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिसमें काम और मोक्ष ये दोनों को भेजा है किसे जीतने के लिए, अहंकार रूपी रावण को, ताटका रूपी अभिमान को, लंकनी रूपी आकर्षण को, मैं कहूँगा बाहर की जो हमारी प्रस्तुति प्रदर्शन ये जो वृत्ति है इसको, इसके साथ साथ सुपर्णखा रूपी काम को, सुपर्णखा काम है, रावण अभिमान है। तो आपकी कामना में जब मोक्ष साथ खड़ा रहता है तब आप राम रूपी रावण रूपी अभिमान को जीतते हैं, आप काम रूपी सुपर्णखा को जीतते हैं, आप आलस्य रूपी कुंभकर्ण को जीतते हैं, आप मन रूपी मेघनाथ को जीतते हैं, आप लंकनी रूपी प्रदर्शन को जीतते हैं, आप मैनाक रूपी सुविधाओं को जीतते हैं। इन सब चीज़ों को जब जीत लेते हैं तब आपकी चेतना में सत्य करुणा दया शीलता प्रीति इसका जो राम राज्य स्थापित होता है वही आपके शरीर को रामचरितमानस बना देता।
महाराज जी, राम जी की बात चल रही है, एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब सीता जी को रावण को हरा दिया राम जी ने, सीता जी आ रही हैं तो राम जी कहते हैं कि अब अग्नि परीक्षा दो। कई सारे लोग कहते हैं कि राम जी सीता जी के चरित्र पे सवाल उठा रहे थे, उन्हें शक हो रहा था इसलिए अग्नि परीक्षा की बात करी उन्होंने, इसके पीछे की क्या सच्चाई है?
पहली बात है ये आपस में कपल मैटर है जबरदस्ती हमको उसमें कोई भी व्याख्या करना अच्छी बात नहीं है, दोनों दो का पर्सनल मामला है, ठीक है। दो किसी आप पब्लिक प्लेस में दो जन आपस में बात कर रहे हो, हम दूर से सोच के लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पर पास में जाएं तो कुछ और ही चीज़ निकल सकती है। तो फिर भी हमें ऐसा मानना है, कई कथाएं फेमस हैं, एक कथा फेमस है कि छाया सीता थी जो अग्नि में समा गई और मूल सीता क्लोन जिसको आज की भाषा में हम कहेंगे कि वो क्लोन था, तो क्लोन समाप्त हो गया और मेन जो सीता जी हैं वो प्रकट हो गई, ऐसी प्रकार की मिस्टिक, और ये सब हो सकता है, उस समय भी हो, इस समय भी होता है, क्या हम ये नहीं जानते? कितने थोड़े समय पहले जब युद्ध हो रहा था अरब में अमेरिका में यहाँ, उस लेवल पर क्लोन की तरह भी लोगों का निर्माण होता ही है, हम शक्ल लोग, तो ये कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं है, वेरी नॉर्मल है। पर मेरे को एक चीज वाल्मीकि रामायण में पढ़ने में आई, जो कि राम जी ने स्पष्ट कही है वहां, और वो ये कही है कि राम जी ने ये चीज इसलिए करी कि कम से कम किसी व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आ जाए। राम जी के मन में तो आ ही नहीं सकती ये बात, आप कैसे कह सकते हो राम जी के मन में आई? राम जी के मन में नहीं है, पर सीता जी वहां रही हैं। और प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण है अरुण भैया कि बात डाइवर्ट हो गई। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो व्यक्ति के मन में कभी भी प्रश्न उठ सकता था, क्या कभी कोई गलत व्यवहार तो रावण ने नहीं किया, क्या उनके चरित्र के ऊपर कोई प्रश्न तो नहीं हुआ। पर राम जी ने इस कृत्य को करके दो चीजें करी कि सीता के चरित्र को पवित्र कर दिया और अपने ऊपर बात ले आई, जिसे आज हम आप अब प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी ने इस प्रकार से ऐसा कृत्य क्यों संपादित किया। राम जी लोक नायक हैं, तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में अग्नि और राम जी का संवाद हुआ है। वहां राम जी ने अग्नि को ये बात कही है स्वयं बाद में कि मैंने ये परीक्षा इसलिए ली, किसलिए नहीं कि मेरे भीतर ये संदेह, मैं एक लोक नायक हूं, मेरे विषय में हर व्यक्ति बातचीत करता है। जब कोई व्यक्ति शीर्षस्थ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका उठना बैठना चलना देखना आना पहनना, कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से जाता है तो पत्रकार एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो जाते हैं कि आज ये क्या पहन के ट्रैवल कर रहे हैं। रोज हम आप सोशल मीडिया पर ये वीडियोस फोटोज देखते हैं, इसका मतलब हर एक व्यक्ति का प्रभाव। राम जी नॉर्मल आदमी से जुड़े हैं, इसका मतलब नॉर्मल है ये बात नहीं, उस समय पूरे आर्यावर्त के सम्राट है, उनकी एक एक क्रिया पर समाज डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, राइट अप होते हैं, लेख लिखे जाते हैं, कविताएं बनती हैं, ग्रंथ बनते हैं, शास्त्र बनते हैं। वो अगर आज थोड़ी देर लेट भी उठ जाएं तो क्यों उठें, इसके ऊपर सोसाइटी में डिबेट होती है। आज किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 3 घंटे विलंब से पहुंचे तो पत्रकार उस पर कितनी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये 3 घंटे क्यों लेट हो गए, या कोई जाम में फंस जाए तो लंबी। तो बड़े व्यक्ति की छोटी बातों पर भी गंभीर विचार होता है। तो आज सीता जी वहां से आ रही हैं, तो राम जी ने एक मैसेज दिया कि सीता कितनी पवित्र है, जो इतनी देर एक किसी राक्षस के यहाँ रहती हुई, जो कि इतना भयंकर था, उसके बाद भी उनकी पवित्रता पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, वो परम पवित्र हैं। यहाँ मैसेज है बड़ा, यहाँ बड़ी बात, इसलिए पब्लिक में किया गया। अगर हमको इसको, ये पॉलिटिकल मूव है, बात समझिएगा, ये दोनों कपल तो एटर्नल कपल हैं, तो इन्होंने एक पॉलिटिकल मूव किया। तो परीक्षा तो पर्सनल में भी ली जा सकती है कि सीता जी आए, जरा 2 मिनट, जरा 1 मिनट मुझे पर्सनल कोई बात करनी है, सब वहाँ से हट जाएं और राम जी परीक्षा ले लें कि चुपचाप सीता जी तुम परीक्षा दे दो, ना तो इश्यू बनता ना आज आप हम प्रश्न कर रहे होते। ऐसे तो कितने इंसिडेंट हुए होंगे, क्या वही हुए जो लिख रहे हैं? इतनी बड़ी लीला है, रोज कुछ ना कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल, बट ये पर्टिकुलरली नोटिस में डाला गया, ये पर्टिकुलरली हाईलाइट कराया गया, ये पर्टिकुलरली पब्लिक में परफॉर्म किया गया, जिससे इस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, प्रश्न हो, बातचीत आए और ये निष्कर्ष निकले कि एक शक्तिशाली और समर्थवान स्त्री। यहाँ एक और बात छुपी है कि रावण के यहाँ जो बहुत दीन बैठी थी, वो दीन नहीं है, वो आग भी उसे नहीं जला सकती, वो इतनी ताकतवर है, आग भी नहीं जला सकती, वो आग को भी पवित्रता से पार कर लेती है। तो किसी की सरलता उसकी दुर्बलता नहीं है, वो परम सबल है पर वो निर्मल है, निर्मल है। सीता जी सरल भी हैं, सबल भी हैं और निर्मल भी हैं। ये अग्नि परीक्षा का परम पवित्र स्वरूप है। अच्छे से पढ़िए शास्त्रों को, आपके मन में कोई समस्या।
महाराज जी ये बताइए, इस पूरे डिस्कशन में हमने राम जी के बाल रूप की बात करी, कई तरह की अलग अलग बातें करी, पर राम जी अयोध्या को छोड़कर आखिरी बार गए कैसे? वो पूरा वृतांत क्या था, इसके पीछे की कथा?
किसी भी इस प्रकार के क्रम को शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, पर जो कुछ कुछ संवाद प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण, या जैसे सीता जी समाई पृथ्वी के भीतर, या भागवत जी में भी उसका एक दो जगह सूत्र आया है कि राम जी उस समय जितने अयोध्या वासी थे उन सब को संग में लेकर के गए, अयोध्या नगरी विराजमान रही। उसके बाद वर्णन आता है कि उन्होंने अलग अलग राज्य सब लोगों को सौंपे, विशेष रूप से जो भरत के पुत्र थे उनको अयोध्या की राज्यगद्दी सौंपी। और उस समय जो भी उन दिनों वहां पर मौजूद थे, जितने अयोध्यावासी थे, उन सबको राम ने मोक्ष देकर साकेत धाम प्रदान किया। राम कोई मानव नहीं है कि जैसे मानव शरीर छोड़ता है ऐसे वो शरीर छोड़ते हो, परंतु अपनी लीला का संवरण करते हैं। इस प्रकार का अंतर ध्यान जिसको हम बोलते हैं, राम भी पूरी प्रजा के साथ अब अयोध्या धाम से साकेत धाम में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ विस्तृत विषय प्राप्त होते हैं।
सो महाराज जी, आज के पॉडकास्ट में हमने श्री राम के चरित्र की बात करी और हम शायद छू भी नहीं पाए उनके चरित्र को और शायद एक जिंदगी में समझ भी नहीं पाएंगे। कोई तीन चीज आप बताना चाहो जो राम जी से सीखने लायक है।
सबसे पहली बात संबंध, संबंध रिलेशनशिप्स। राम जी से रिलेशनशिप्स का महत्व सीखा जा सकता है। दूसरी मैं विचार कहूंगा राम जी से एक चीज सीखने में आई है कि जो किसी भी चीज का लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, राम जी शॉर्ट टर्म में विश्वास नहीं करते। कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। आप धैर्य रखेंगे तो फिर विस्तार से आप वापस लौट करके आएंगे। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आती है कि आप अच्छे हो, मैं सत्य हूं, मैं अच्छा हूं, और मैं उसके लिए कितना भी रूड हो जाऊं, दूसरे के अस्तित्व का भरोसा नहीं करो, दूसरा क्या सोचता है इसको महत्व नहीं दो, इससे भी काम नहीं चलता। राम जी जो करते हैं उस पर दोनों चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक से कर रहा हूं, पर जो मैं कर रहा हूं उस पर दूसरा व्यक्ति भी ठीक से सोचे, उसका प्रभाव करे, उसकी सोच में गड़बड़ी ना आए उसकी कृत्य से, इसको भी ध्यान रखते हुए शुरू से लेके बाद तक राम जी हर चीजों को बहुत संभाल के चलते हैं। मेरे पिताजी तीन बातें और कहते थे कि राम जी अत्यंत सरल हैं, राम जी अत्यंत सबल हैं, और राम जी अत्यंत सजल हैं। ये तीनों चीज आज के समय मिलना कठिन है। व्यक्ति सबल भी होना चाहिए, इतना सबल कि बड़े बड़े राक्षसों को मार दे, उसके बाद भी इतने सरल कि रावण को मारने के बाद भी विभीषण से पूछ रहे हैं अगर इजी हो तो क्या पुष्पक विमान मुझे छोड़ के आ सकता है। सुग्रीव को भी कह रहे हैं ठीक लगे तो मदद कर देना। बहुत सरल है, बहुत हम्बल है, पावरफुल होते हुए बहुत हम्बल है, और जरूरत लगने के बाद उनकी आंखों में बहुत सजलता भी है। दूसरे के कष्ट को तुरंत महसूस कर लेते हैं, किसी को मेरे से तकलीफ नहीं हो जाए इस बात का विचार कर लेते हैं, दूसरे के कष्ट का अनुभव कर लेते हैं और उसके लिए समाधान का प्रयास करते रहते हैं। ये सबलता, सरलता और सजलता, ये तीनों गुण ईश्वरीय गुण हैं। जो व्यक्ति के भीतर आ जाए तो वो ईश्वर के पास अपने आप को अनुभव कर सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
हमने राम जी की कथा सुनी, श्री कृष्ण की कथाएं हम जानते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि एक पुरुष को अपनी वाइफ को कैसे रखना चाहिए, तो क्या पॉइंट्स आप इन कथाओं से निकाल के बताएंगे?
उसको बस वाइफ नहीं माने और सब माने, उसको मित्र माने, उसको प्रिय माने, उसको सहयोगी माने, उसको अपना कंपेनियन माने, अपना बिलविड माने, कई बार अपने से बड़ा भी माने, कई बार अपने से छोटा भी माने, मैं कहूँगा कई बार गुरु भी माने, कई बार शिष्य भी माने, केवल वाइफ मानेगा तो नहीं जी पा जीवित रह पाएगा। तो हस्बैंड नहीं होगा, हसबंद हो जाएगा। परंतु ये सब मानेगा, आवश्यकता लगने पर प्रत्येक चीज देगा। सबने सीखा है कई विषयों पर राम जी ने सीता जी को सिखाया भी है, कई चीज़ों पे सीता जी से सीखा भी है, मित्र भी व्यवहार किया है, बड़े की तरह भी छोटे की तरह भी। वाल्मीकि जी लिखते हैं जब वन में जा रहे हैं तो सीता आगे चल रही है, राम पीछे चल रहे हैं, आगे सीता जी को चला रहे, तुम आगे चलो मैं पीछे से तुम्हारी रक्षा करते चलूंगा। तो धीरे 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 उस तरफ हम हर चीज जब उसके साथ मान के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल कहाँ होती है, बहुत सारी जगह पर हम जब ये आशा रखते हैं कि वाइफ उसे कहते हैं जो हमारा सम्मान करे, पर उल्टी चीज है। हम अगर सबसे पहले उसका सम्मान शुरू करेंगे तो अपने आप रेसिप्रिकेशन होता है, फिर अपने आप आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। तो आप रिस्पेक्ट करने में जिसको न चूके, आप पति पने के अभिमान से निवृत्त होकर उसे अपने साथ रखिए, मुझे लगता है कि आपको स्वर्ग देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं है।
क्या बात पंडित जी, इसी बात के साथ हम आज की अपनी पॉडकास्ट को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और पंडित शो में आने के लिए।
थैंक यू। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम,
जय श्री राम।